بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریے شروتا متروں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। हमारे फेसबुक पेज का पता है parstoday.hindi और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज सोमवार है, जमादिस्तानी की 18, दय मास की 11 और जनवरी की 1 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा में श्रोताओं, हम समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं और समीक्षाएं पेश करते हैं। राजनीतिक चर्चा के बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम विश्व दर्पण, जो कि हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। विश्व दर्पण के बाद हम एक और साप्ताहिक कार्यक्रम सुनाएंगे, फारसी साहित्य का अनमोल रत्न। ये साप्ताहिक कार्यक्रम हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा। तो श्रोताओ, यह है समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। नए साल पर गजा में युद्ध जारी है। ज़ायनी शासन की ओर से गजा में बर्बरता जारी रहने पर फिलिस्तीनियों ने भी जोरदार जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि IRGC के कमांडर शहीद रजी की टारगेट किलिंग करके ज़ायनी शासन अपनी आयु बढ़ा नहीं पाएगा। संवेदनशील हालात में यमन सरकार के वरिष्ठ वार्ताकार ने तेहरान का दौरा करके अहम मुलाकातें की हैं। भारत ने ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए अपना अंतरिक्ष मिशन रवाना कर दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। नए साल की शुरुआत पर जहां गजा पट्टी में ज़ायनी शासन के भयानक अपराध जारी हैं, वहीं फिलिस्तीनी संगठनों ने इसराइल पर रॉकेट हमले करके ये दर्शा दिया है कि जवाबी हमले करने की उनकी क्षमता पूरी तरह सुरक्षित है। गजा पट्टी के जबालिया इलाके पर ज़ायनी सेना की बमबारी में कम से कम 6 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। मगाजी शरणार्थी शिविर पर भी ज़ायनी सेना ने हमला किया, जिसमें 3 फिलिस्तीनी शहीद और कई घायल हो गए। जिहाद इस्लामी संगठन की सैनिक शाखा अल कुस ब्रिगेड ने कहा कि उसने सेंट्रल गजा पट्टी में अल बुरैज शरणार्थी शिविर के पूर्वी भाग में ज़ायनी सैनिकों पर बद्र 1 मिसाइल से हमला किया। ज़ायनी सेना गजा शहर के दक्षिणी भाग पर गोलाबारी कर रही है, जबकि इसराइली अखबार हारेट्स ने लिखा है कि गजा जंग का अगला चरण 6 महीने तक जारी रह सकता है और गजा में मौजूद सेना उत्तरी सीमा की तरफ जाने के लिए तैयार है। लेबनान की सीमा पर भी लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। इसराइल के चैनल 12 ने बताया कि लेबनान से एक मिसाइल फायर किया गया जो अल जलील के इलाके में गिरा, जिसके बाद इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। वहीं ज़ायनी सेना के ड्रोन विमान ने दक्षिणी लेबनान के कफर कला इलाके पर रॉकेट फायर किए। वहीं दूसरी ओर वेस्ट बैंक में ज़ायनी सेना ने 32 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां रविवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक हुई, इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। इन गिरफ्तारियों के साथ ही गत 7 अक्टूबर को तूफान अलक्सा ऑपरेशन के बाद से वेस्ट बैंक में ज़ायनी सैनिकों के हाथों गिरफ्तार किए जाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 4,910 हो गई है।
अब्दुल्लाहियान कहते हैं कि फिलिस्तीन के संकट में ब्रिटेन की बहुत ही स्पष्ट भूमिका रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीनियों की भूमि के अतिक्रमण और उनके जातीय सफाई में ब्रिटेन की भूमिका बहुत स्पष्ट है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने ब्रिटेन में के अपने समकक्ष डेविड कैमरून से टेलीफोनी वार्ता की। इस वार्ता में उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन संकट 7 अक्टूबर को शुरू नहीं हुआ बल्कि ये पिछले 75 वर्षों से चला आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना था कि हम आशा करते हैं कि क्षेत्रीय परिवर्तनों और द्विपक्षीय संबंधों के बारे में यथार्थवादी और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ब्रिटेन संबंधों को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। इस टेलीफोनी वार्ता में अब्दुल्लाया ने गजा और यूक्रेन के बारे में अमरीका और कुछ पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए जाने वाले दोहरे मापदंडों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल को गजा में जनसंघर्ष करने और जातीय सफाई की अनुमति देकर पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल दिया जाए और दूसरी ओर लाल सागर में जानियों के एक जहाज को रोके जाने को आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा बनाकर उसकी भर्सना की जाए।
फिलिस्तीनियों के कड़े प्रतिरोध ने ज़ायोनी सेना की नाक में दम कर रखा है। गजा में जारी कड़े प्रतिरोध को देखते हुए अवैध ज़ायोनी शासन ने अपनी सेना की 5 बटालियनें क्षेत्र से वापस बुलाई हैं। जमीनी युद्ध में फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं की कड़ी टक्कर के कारण ज़ायोनी सेना ने अपनी 5 सैन्य टुकड़ियों को गजा से वापस बुला लिया। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद किया गया और ऐसी संभावना पाई जाती है कि आगामी कुछ दिनों के भीतर ज़ायोनी सेना गजा से अपने कुछ और सैन्य बलों को वापस बुलाए। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि गजा के उत्तरी क्षेत्रों जैसे अन्नसर अल मकोसी अरंतीसी और शाती शरणार्थी शिविर के उत्तरी क्षेत्र से ज़ायोनी सेना ने अपनी कई बटालियनें वापस बुलाई हैं। बहुत से सैन्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये काम ज़ायोनियों ने गजा पर हमलों के परिणामहीन होने की वजह से किया है। ज़ायोनियों की ओर से गजा से अपनी कई बटालियनों को वापस बुलाने की बात ऐसे में सार्वजनिक हो रही है कि जब ज़ायोनी सेना के प्रवक्ता ने रविवार को यह बात स्वीकार की है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इस युद्ध में उसके 506 सैनिक मारे जा चुके हैं।
ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने नववर्ष के अवसर पर विश्ववासियों को बधाई पेश की है। सैयद इब्राहिम रईसी ने क्रिश्चियन देशों के नेताओं और वहां की जनता को नए साल पर बधाई पेश की है। अपने संदेश में ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने समस्त विश्ववासियों के लिए शांति एवं स्वास्थ्य की कामना की है। राष्ट्रपति रईसी ने ईसाई और इस्लाम दो आसमानी धर्मों को प्रेम, शांति एवं स्नेह का संदेश देने वाला धर्म बताया। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर इन दोनों धर्मों के मानने वालों को अपनी धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष को अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हुए उसको व्यवहारिक बनाना चाहिए। अपने संदेश में ईरान के राष्ट्रपति ने लिखा है कि वर्तमान समय के महत्वपूर्ण संकटों में से एक संकट जिसने पूरी मानवता को अपने घेरे में ले रखा है वह है गजा का संकट, जिसमें अवैध ज़ायोनी शासन के हाथों निर्दोष फिलिस्तीनियों का जनसंहार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि नए साल में विश्व के नेताओं के प्रयासों से इस अमानवीय काम को रुकवाने, उत्पीड़न को समाप्त करवाने और शांति एवं सुरक्षा स्थापित कराने जैसे कामों के साक्षी रहेंगे। याद रहे कि आज सोमवार 1 जनवरी से नया वर्ष 2024 आरंभ हो रहा है।
इस्लामिक गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शहीद रजी की टारगेट किलिंग से ज़ायोनी शासन अपना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। इस समय इलाके में वर्चस्ववादी काबिज शासन के मुकाबले में प्रतिरोध की बुनियादें पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ ज़ायोनी शासन से संघर्ष कर रही हैं और ये तय है कि इस टारगेट किलिंग से दुष्ट ज़ायोनी शासन अपनी उम्र और नहीं बढ़ा पाएगा। नासिर कनानी ने शहीद सुलेमानी की शहादत की 4वीं बरसी के बारे में कहा कि शहीद सुलेमानी के विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और इलाके में फैल चुके हैं और रेजिस्टेंस की सोच दिन ब दिन अधिक ताकतवर होती जा रही है। नासिर कनानी ने कहा कि हम शहीद रजी की हत्या के ज़ायोनी शासन के भयानक अपराध की निंदा करते हैं। इस तरह की हरकतें करके ज़ायोनी शासन अगर ये कोशिश कर रहा है कि उसकी उम्र में कुछ इजाफा हो जाए तो ये होने वाला नहीं है। उन्होंने शहीद सुलेमानी के अमेरिका के हाथों टारगेट किलिंग के मसले के बारे में कहा कि हम अमेरिका के अपराध के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और ये विषय कभी भी भूलेंगे नहीं। नासिर कनानी ने ईरान मिस्र संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के टाइम टेबल के अनुसार पारस्परिक संबंधों का विषय आगे बढ़ रहा है और दोनों ही देशों में सकारात्मक माहौल है। हम चाहते हैं कि दोनों इस्लामी देशों के बीच रिश्ते एक एक कदम करके आगे बढ़ें और इसमें इसके सकारात्मक सकारात्मक परिणाम देखे जाएं।
इस्लामी गणराज्य ईरान की नौसेना के डिस्ट्रॉयर जहाज ने बाबुल मंदम स्ट्रेट पार करके लाल सागर में दस्तक दी है। नौसेना के फ्लोटिला 88 ने समुद्री सुरक्षा के अपने मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपने नेविगेशन के तहत बाबुल मंदम स्ट्रेट को पार किया और लाल सागर में प्रवेश किया है। दूसरी ओर गजा जंग के चलते तनाव बढ़ जाने के बाद अदन की खाड़ी और बाबुल मंदम के इलाके में घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने हाल ही में ऐलान किया है कि वे इसराइल जाने वाले जहाजों को बाबुल मंदम स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। इस ऐलान के बाद अंसारुल्लाह ने इस इलाके में इसराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका इस कोशिश में है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैनिक गठजोड़ बनाकर इसराइल की मदद करे। फ्रांस और इटली ने अलायंस बनाए जाने का विरोध किया, जिससे अमेरिका की योजना नाकाम हो गई, मगर वो अभी भी लाल सागर में उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है।
तेहरान के दौरे पर आए यमन सरकार के वरिष्ठ वार्ताकार ने इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार से मुलाकात की। यमन के भीतर संघर्षरत पक्षों के बीच संघर्ष विराम के हालात में शांति वार्ता की प्रक्रिया जारी है और इससे धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार अली असगर खाजी ने सोमवार को यमन सरकार के वरिष्ठ वार्ताकार मोहम्मद अब्दुल सलाम से बातचीत में यमन की ताजा तरीन स्थिति का जायजा लिया। वार्ता में दोनों पक्षों ने गजा के हालात पर भी विस्तार से बात की और इस बात पर जोर दिया कि गजा पट्टी पर जायनी शासन के हमलों का सिलसिला फौरन रोका जाना चाहिए। याद रहे कि गजा पर जायनी शासन के हमलों के जवाब में यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने जायनी शासन के हितों पर बड़े साहसिक हमले किए हैं।
भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने अपने स्पेस रॉकेट लॉन्च कर दिया है, जिसका लक्ष्य ब्लैक होल्स का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष मिशन श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:10 पर लॉन्च किया गया। ब्लैक होल्स पर अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला ये दूसरा मिशन है। इससे पहले नासा ने पहली बार वर्ष 2021 में मिशन लॉन्च किया था। इसरो का कहना है कि वैज्ञानिकों को ब्लैक होल्स से संबंधित जानकारियों और विज्ञान में मदद देना चाहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने मिशन लॉन्च के बाद कहा कि वो बहुत उत्साहित हैं कि आगे क्या होगा और कौन सी नई जानकारियां सामने आएंगी। इसरो का सैटेलाइट एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट का मकसद ब्लैक होल्स पर गहराई से अध्ययन करना है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यह स्पेस रॉकेट लगभग 5 साल तक काम करने में सक्षम है। इससे पहले भारत का वर्ष 2023 में ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 सफलता के साथ चांद पर लैंड कर गया था और इसके साथ ही भारत चांद पर अपना मिशन भेजने वाले दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया था।
रूस से भारत के बढ़ते रिश्तों पर पश्चिमी देशों की राजधानियों में चिंताएं गहरी होती जा रही हैं। डॉन न्यूज ने ब्रितानी मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है कि भारत यूक्रेन के मामले में रूस के साथ जो खड़ा हुआ है और ये किसी भी स्थिति में निष्पक्ष स्टैंड नहीं है। ब्रितानी प्रधानमंत्री भारत के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं और भारत रूस के इरादों का समर्थन कर रहा है। ब्रितानी मीडिया का कहना है कि लंदन सरकार जहां भारत में मोदी सरकार के हाथों नरसंहार और मानवाधिकार के हनन पर खामोश है, वहीं भारत का रूस की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार संसद को इस्तेमाल करके कानूनों में भारी बदलाव ला रही है, जिसे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की भयानक लहर शुरू होने की भूमिका माना जा रहा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इराक के वरिष्ठतम शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को जीत का कमांडर कहा था। उनकी शहादत से तीन दिन पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में बहुत ही कम बात हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हेली कोहेन को उनके पद से हटा दिया है। सन 2023 के अंतिम दिन ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया। जहां अमेरिका के भीतर इसराइल के समर्थन का विरोध बढ़ता जा रहा है, वहीं बाइडेन अवैध ज़ायोनी शासन की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। इराक के वरिष्ठतम शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को जीत का कमांडर कहा था। उनकी शहादत से तीन दिन पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में बहुत ही कम बात हुई है। मंगलवार 31 दिसंबर 2019 को जनरल कासिम सुलेमानी तेहरान से बैरूत के लिए निकल जाते हैं। वहां उनकी हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात थी। उसके बाद वो सीरिया चले जाते हैं। वहां से वो गुरुवार 2 जनवरी 2020 के बगदाद जाने वाले थे। इस बारे में पूरी रिपोर्ट पेश करें साथ ही रविश जैदी।
खबर इस्तिशाद قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني।
इराक के वरिष्ठ शिया धर्म गुरु आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को विजयी कमांडर का नाम दिया था। उनकी शहादत से तीन दिन पहले की कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके बारे में बहुत ही कम बात हुई है। मंगलवार 31 दिसंबर 2019 को जनरल कासिम सुलेमानी तेहरान से बैरूत के लिए रवाना हुए। वहां उनकी हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात थी। उसके बाद वो सीरिया चले जाते हैं, जहां से वो गुरुवार 2 जनवरी 2020 को बगदाद जाने वाले थे। इस बीच एक अजीब घटना हुई। गुरुवार की सुबह 11 बजे इराक में स्थित अमरीकी सैन्य छावनी ऐनुल असद से कई युद्धक हेलीकॉप्टर और जासूसी ड्रोन विमान उड़ते हैं और वो बगदाद खासकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास आसमान में उड़ने लगते हैं, जबकि जनरल कासिम सुलेमानी उस समय सीरिया में ही थे। इराक के रणनीतिक मुद्दों के विशेषक अहमद अल शरीफी कहते हैं कि बगदाद के आसमान पर उड़ने वाले अमरीकी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से भारी हथियारों से लैस थे। कई साल बीत गए थे कि हमने इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। मैं समझ गया था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ऐसा क्या होने वाला है। इस बीच इराक के सैन्य अधिकारियों को भी इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि आखिर अमरीकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन क्यों उड़ान भर रहे हैं। वहीं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जनरल कासिम सुलेमानी इराक सरकार के आधिकारिक निमंत्रण पर तत्कालीन इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी के साथ मुलाकात करने वाले थे। इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी कहते हैं कि मैं गुरुवार 2 जनवरी की सुबह 8:30 बजे शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, ताकि कुछ अहम मुद्दों पर उनसे विचार विमर्श करें। मैं एक रात पहले से ही उनके साथ चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के अहम बिंदुओं को लिख रहा था, तभी मेरे कार्यालय के हेड ने मुझे फोन किया कि बगदाद हवाई अड्डे के पास बहुत ही भीषण धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये भीषण धमाकों की आवाजें वही आवाजें थीं कि जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस आतंकी अमरीकी सेना के कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिए गए थे। इस हृदय विदारक घटना को 4 साल का समय बीत रहा है, लेकिन आज भी बगदाद हवाई अड्डे की दीवारों पर उस त्रासदी की निशानियां मौजूद हैं। दीवारों पर उन महान शहीदों की तस्वीरें मौजूद हैं कि जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, اور ساتھ ہی امریکی آتنکواد کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ بغداد ہوائی اڈے کے پاس سے آئی آر آئی بی کے سنباد داتا جلال خالدی کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو نے ہیلی کوہن کو ان کے پد سے ہٹا دیا ہے۔ سن 2023 کے انتم دن زائونی شاسن کے ودیش منتری کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا۔ زائونی شاسن کے ودیش منتری کے روپ میں ہیلی کوہن کو ہٹائے جانے کے کئی آیام و کارن بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا کارن تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایلن کوہل کے کریا کلاپ بہت کمزور رہے ہیں۔ غزہ یدھ کو آرمبھ ہوئے اب 3 مہینہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس یدھ کے کارن زائونی شاسن کے انتراشٹریہ استر پر آلوچنا ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی قائم رضوی،
نیتن یاہو نے ایلی کوہن کو ان کے پد سے ہٹا دیا ہے۔ سن 2023 کے انتم دن زائونی شاسن کے ودیش منتری کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا۔ اویدھ زائونی شاسن کے ودیش منتری کے روپ میں ایلی کوہن کو ہٹائے جانے کے کئی کارن بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا کارن تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایلن کوہن کے کریا کلاپ بہت ہی کمزور رہے۔ غزہ یدھ کو آرمبھ ہوئے اب 3rd مہینہ ہونے کو جا رہا ہے۔ اس یدھ کے کارن زائونی شاسن کی انتراشٹری استر پر کڑی آلوچنا ہو رہی ہے۔ یہ شاسن عام جنمت کے کڑے دباؤ میں ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ سرکاریں بھی اس پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں۔ زائونیوں کا ماننا ہے کہ ان حالت میں ایک ودیش منتری کے روپ میں ایلی کوہن کے کریا کلاپ بہت ہی کمزور رہے۔ آج بھی اس اویدھ شاسن کے ورد دنیا کے بہت سے حصوں میں پردرشن کیے جا رہے ہیں۔ یہ پردرشن ان دیشوں میں بھی ہو رہے ہیں جو کسی نہ کسی روپ سے اویدھ زائونی شاسن کے سمرتھک مانے جاتے ہیں۔ ایلی کوہن کو ان کے پد سے ہٹانے کا دوسرا کارن یہ ہے کہ 27 اگست 2023 کو انہوں نے اٹلی میں لیبیا کی تتکالین ودیش منتری سے بھینٹ وارتا کی تھی۔ اس بھینٹ وارتا کو گوپنیے رکھا جانا تھا، کنتو وہ گوپنیے نہیں رہ پائی اور سارجنک ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبیا میں بہت بڑے پیمانے پر ویروت پردرشن کیے گئے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لیبیا کی تتکالین ودیش منتری کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا اور ان کو لیبیا چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس گھٹنا کے ساتھ ہی لیبیا میں ویاپک استر پر اسرائیل کا ویروت کیا جانے لگا۔ ان ویروت پردرشنوں کے کارن لیبیا کے ساتھ اویدھ زائونی شاسن کے سمبندھوں کو سامان کرنے کا کاریکرم بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس کو اویدھ زائونی شاسن کے ودیش منتری ایلی کوہن کی اکشمتا بتایا گیا، کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ملاقات کو گوپنیے رکھنے میں وفل سدھ ہوئے۔ ایلی کوہن کو اپنے پد سے برخاست کیے جانے کا ایک انیہ کارن نیتن یاہو کے منتری منڈل میں پایا جانے والا گمبھیر مت بھید ہے۔ اپنے اپدست کیے جانے کی سوچنا ملنے پر انہوں نے سماچار پتر یدی اوت آہارنوت کے ساتھ وارتا میں کہا تھا کہ میں منتری منڈل کے نرنے کا سمان کرتا ہوں، کنتو یہ کام یدھ کے حالت میں اچت نہیں ہے۔ نیتن یاہو دوارا اس بات پر زور دیے جانے کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ایلی کوہن کے اس بیان نے اویدھ زائونی شاسن کے ستہ کے گلیاروں میں پائے جانے والے مت بھیدوں کی پشٹی کر دی ہے۔ حالانکہ ابھی تو ایلی کوہن کو ہی ودیش منتری کے پد سے ہٹایا گیا ہے، کنتو اویدھ زائونی شاسن میں پائے جانے والے گمبھیر مت بھیدوں کے دشٹیگت اس بات کی بہت ادھک سمبھاونا پائی جاتی ہے کہ غزہ یدھ کے بعد نیتن یاہو کا منتری منڈل ہی تہس نہس ہو کر رہ جائے گا اور اس کے راجنیتک جیون کا انت بھی ہو جائے گا۔ اسرائیل میں لمبے سمے سے نتنیاہو کے ورد پردرشن کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ نتنیاہو کو اس کے پد سے ہٹائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ ایسے میں سوئم کو سرکشت رکھنے کے لیے یہ سمبھو ہے کہ نتنیاہو اپنے ہی منتری منڈل کے کچھ انیہ منتریوں کو باہر کا راستہ دکھانے کا پریاس کرے۔ کنتو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پرکار کی حرکتیں کر کے نتنیاہو کب تک خود کو ستا کی گدی پر بنائے رکھ سکتا ہے۔
جہاں امریکہ کے بھیتر اسرائیل کے سمرتھن کا ورودھ بڑھتا جا رہا ہے، وہیں بائیڈن اوائد زانی شاسن کی ہر سمبھو سہایتا کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی راشٹرپتی دوارا اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کا ڈیموکریٹ سینیٹر نے ورودھ کیا ہے۔ سمیکشا پیش کریں سواتھی۔
جہاں امریکہ کے بھیتر اسرائیل کے سمرتھن کا ورودھ کیا جا رہا ہے، وہیں پر جو بائیڈن اویدھ زائونی شاسن کی ہر سمبھو سہایتا کے لیے تتپر دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی راشٹرپتی دوارا اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کا ڈیموکریٹ سینیٹر نے ورودھ کیا ہے۔ ٹیم کین نے انیہ ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر جو بائیڈن سے مانگ کی ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار بھیجے جانے کے بارے میں وہ اسپشٹیکرن پیش کریں۔ ورجینیا راجی کے سینیٹر ٹیم کین ڈیموکریٹک پارٹی کے ان نیتاؤں کے ساتھ ہو گئے ہیں جنہوں نے امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن دوارا اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنے پر پرشن چنہ لگا دیا ہے۔ ٹیم کین نے کہا ہے کہ میں جو بائیڈن سے اس کام کے بارے میں کارن جاننا چاہتا ہوں۔ اس امریکی سینیٹر کے اترکت امریکہ کے بھیتر عام لوگ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کے درشٹیگت بائیڈن سرکار کی اور سے اسرائیل کے آرتھک اور سینک سمرتھن کا ورودھ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کا جاتیہ صفایا کرنے والے اویدھ زائونی شاسن کے لیے نومبر 2023 میں امریکہ کی اور سے 14 ارب $300 ملین کے پیکیج کو بھیجے جانے کا پربندھ کیا گیا تھا۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے اسے اسرائیل کے لیے ابھوتپورو سہایتا پیکیج کا نام دیا تھا۔ امریکی سرکار کی اور سے اسرائیل کا سمرتھن کیے جانے پر اس دیش کے بھیتر بڑے پیمانے پر ورودھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ورودھ کیول امریکہ تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ انیہ دیشوں میں بھی لوگ اس کا کھل کر ورودھ کر رہے ہیں۔ جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ جس طرح وبھن دیشوں کے لوگ اسرائیل کا ورودھ کر رہے ہیں، اگر اسی طرح وشو کے وبھن دیش بھی ویوہارک روپ سے اسرائیل کا ورودھ کرنے لگے تو اسرائیل کا نہ کیول دساہس کم ہوگا بلکہ فلسطینی جنتا پر اسرائیل دوارا کیے جا رہے اتیاچاروں کو بھی کم کرنے میں دھیان یوگی سفلتا ملے گی۔
تو شوتو، اسی کے ساتھ راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتو، اب پرستت ہے ساپتاہک کاریکرم وشو درپن۔ विश्व दर्पण।
दोस्तों, विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम इसराइल की पराजय और यमन के मैदान में उतरने के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। جیسے جیسے غزہ یدھ لمبا کھنچتا جا رہا، اسرائیل کی پراجے کے آثار زیادہ ہی نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ اسرائیلیوں نے تو کھل کر سویکار کر لیا ہے کہ غزہ کے ساتھ یدھ میں اسرائیل کو ہار ملی ہے۔ جہاں ایک طرف اسرائیلی سینا کے پورو چیف آف اسٹاف ڈین ہیلوٹس نے اسپشٹ شبدوں میں کہا ہے کہ ہم یدھ ہار چکے ہیں، وہیں زائونی نیسٹ نے پچھلے ستر میں ودیشی اور سرکشا سمیتی کے پرمکھ اوور شلاح نے بھی سویکار ہے کہ اسرائیل کے پاس حماس کو نشٹ کرنے کی شمتا नहीं है। इसराइल की हार के कुछ संकेत हैं जिन्हें इस तरह से बयान किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि युद्ध लंबा खिंच रहा है। गजा को अब तक इतने दिन हो गए हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। ये युद्ध इतना लंबा कैसे खिंच गया, जबकि युद्ध के दोनों पक्षों की शक्ति का अंतर जमीन और आसमान का अंतर है। यानी ज़ायनी शासन हमास की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली है। पाकिस्तान के सीनियर टीकाकार सफदर रजा कहते हैं कि गजा जंग का फैसला तो 7 अक्टूबर को ही हो गया था, जब परिवेष्टन का शिकार एक दल ने पूरे इसराइल को हिला कर रख दिया था।
मैं समझता हूं कि जंग का फैसला तो पहले दिन ही हो गया था कि जब एक हमेशा से महसूर जमात ने एक बहुत बड़े ऐसे मुल्क जिसको पूरे यूरोप और पूरे ऑस्ट्रेलिया और पूरे अमेरिका और पूरे पूरे आलम आलमी ताकतों की पुश्त पनाही और मदद हासिल थी और उसकी मिलिटेरली उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था और उसको ऐसा हवा बना के भेज पेश किया जा रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ी ताकत हो, जबकि वो तो तारे अनकबूत से भी कमजोर साबित हुई और इसको तारे अनकबूत और मकड़ी के जाले से तो तशबीह बहुत पुरानी दी जा चुकी थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जंग का फैसला तो 7 अक्टूबर को हो गया था। अब उसके लिए अल्फाज ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मेरी इस पर टेक एक और है। एक शख्स ने अपने साथ इक्तदार को बचाने के लिए और अपनी सियासी जिंदगी के खात्मे को तूल देने के लिए हजारों लोगों को कत्ल कर रहा है और लोग जानते हैं कि नेतन्याहू जिस दिन जंग बंद होगी उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट उसको इम्पीच कर देगी, उसकी न्यायालय को उसको सजा देगी और उसके गैर कानूनी इसराइल पर सियासी कब्जे को मुरदे सवाल करार देगी। उस शख्स ने अपनी सियासी जिंदगी को बढ़ावा देने के लिए अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 20,000 से जायद अफराद को कत्ल किया है और वो जो वेस्ट और वो जो अमेरिका और वो जो बरतानिया जो कि इतनी बड़ी रिपोर्टें और ह्यूमन राइट्स के रखवाले बनते हैं उनकी मुनाफकत खुलकर सामने आ गई है कि उन बच्चों और मरीजों और अस्पतालों की बमबारी के ऊपर वो लबकुशाई नहीं करते और वो यूक्रेन के ऊपर बहुत लंबे लंबे बयान देते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि न सिर्फ ये कि इसराइल मिलिटरली सियासी तौर पर और अखलाकी दिवालियापन का शिकार होकर बहुत बड़ी शिकस्त का उसको सामना है, बल्कि मगरब का इंसानी हकूक का और बच्चों के और खवातीन के हकूक का पोल भी खुल गया है।
इसराइल के मरने वाले घायल और लापता सैनिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसराइली हलकों में चिंता की लहर दौड़ गई है। सबसे अहम बात यह है कि इसराइल की हार का सबसे अहम संकेत यह है कि वो हमास के खिलाफ अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। गजा जंग ने उस वक्त अहम मोड़ अख्तियार किया जब यमन ने अपने फिलिस्तीनी भाइयों का खुलकर समर्थन करते हुए इसराइल पर हमले शुरू कर दिए और लाल सागर में इसराइल के लिए जाने वाली नौकाओं और समुद्री जहाजों को निशाना बनाया। यमन के हमलों से अमेरिका इतना बौखला गया कि उसने गठबंधन बना डाला, लेकिन उसके बावजूद यमन के हमले जारी हैं। पाकिस्तान के सीनियर टीकाकार राशिद अहद कहते हैं कि अमेरिका ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के बहाने गठबंधन बनाए, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि यह गठबंधन इसराइल की सुरक्षा के लिए है, न कि समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए।
असल मसला कि यमनियों ने तो इस बात को वाजे कर दिया है कि जो भी जहाज इसराइल जाएगा, इसराइल से कनेक्टेड होगा, मुतालिक होगा उसकी तजारत से, उसको हम निशाना बनाएंगे। फिर अमेरिका को क्या तकलीफ है? इसका मतलब कि अमेरिका ये बात अब बिल्कुल पाए सबूत को पहुंच चुकी है कि अमेरिका जो है शरीके जुम्र रहा है इसराइल में हमेशा से, अव्वल रोज से, और हमेशा इसकी हिमायत करता रहा है, शरीके जुम्र रहा है, ये कंप्लीसिट है, ये बात अब एक्सप्लिसिट हो चुकी है, वाजे हो चुकी है ये बात क्या वो वाकईतन कंप्लीसिट है। तो उनको क्या तकलीफ? अब रहा कि इत्तेहाद की जहां तक मुअसर हो इनके कामयाब होने, तो इससे पहले 16 ममालिक के इत्तेहाद इसी खुत्ते में बनाया था क्या कहते हैं अंसारुल्लाह के खिलाफ जेर कर सके यमन को। यमन ने इन तमाम की यानी कि पर अपनी फौजी बर्तरी साबित की مزاحمت کے ذریعہ، بہترین مزاحمت کے ذریعہ، اور بالآخر یعنی سعودی عرب نے اور یمن میں ٹروس ہوا، معاہدہ ہوا، جبکہ اس کی قیادت برٹش یعنی برٹن اور امریکہ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ میں وہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اپنے صحیح موقع، اپنی قوت ارادی اور اپنی عزم و حوصلہ کی بنیاد پر اپنے صحیح اور منصفانہ موقف کی۔
وشو درپن، انتراشٹریہ گھٹنا کرموں کی نبض ٹٹول کر وشو بھر میں ہونے والے پریورتنوں کی تہ تک جانے والا کارکرم وشو درپن۔ ہر ہفتے سوموار کو
युद्ध की शुरुआत में ज़ायोनिस्ट शासन ने घोषणा की कि हमास को नष्ट करना युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। फिर भी न केवल हमास को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि स्वयं ज़ायोनी भी ये स्वीकार करते हैं कि हमास को नष्ट नहीं किया जा सकता। यमन की सेना ने लाल सागर سے حملے کر کے جنگ میں ایک نیا رخ پیدا کر دیا۔ پاکستان کے سینئر ٹیکہ کار صفدر رضا کہتے ہیں کہ یمن کے خلاف دیشوں کے گٹھ بندھن نے مانو یمنی سینا کو اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا ابھیاس کرایا ہو۔
میرا تو ایسے ہی خیال لگتا ہے کہ جیسے کہ چند سال 43 رکنی مسلمان اور دیگر ملکوں کا جو یمن کا محاصرہ اور جنگ تھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف انہوں نے یمنیوں کو جنگی مشقیں کرائی ہیں کہ جب وقت آئے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے تو یہ 43 ملکی سعودی عرب کی جو قیادت میں یمنیوں کے خلاف جو اس نے یمن کے انصار اللہ اور دیگر آزادی خواہ گروپوں کو اسرائیل کے خلاف جنگی مشقیں کرائی ہیں، اور آپ اس نتیجہ دیکھ لیں کہ اب امریکہ خود کود پڑ رہا ہے اور یمنیوں نے کہا آپ آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہم جہتی جنگ ہے، اور ریڈ سی اور باب المندب میں جو یمنیوں نے اقدامات کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ ویس کی چیخیں نکل جانی چاہیے، لیکن وہ اس پر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر اتنے زیادہ شدید مظالم کیے ہیں کہ اس کی حمایت کرنے والے ممالک کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یمنیوں نے جو شجاعانہ اقدام کیا ہے، اور یمنیوں جو اپنے ملک سے نہ صرف یہ کہ باب المندب اور بحر احمر یعنی ریڈ سی میں اسرائیل کا ڈیسٹینیشن کرنے والے جہازوں کو روکا ہے، تو اس کے بعد پھر عرب ملکوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ یمنیوں کے میزائل کو اپنے آئرن ڈروم یعنی سعودی عرب بالخصوص ان میزائلوں کو اسرائیل جانے سے پہلے رستے میں ہی مار گراتا ہے۔ اور وہ جو 1973 کی جنگ تھی، جنگ رمضان تھی، جس میں بے شمار ملک، جس میں مصر ہے اور سعودی عرب ہے اور شام ہے اور اردن ہے اور لبنان ہے، انہوں نے جو مل کر اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور 6 دن سے زیادہ اور 17 دن سے زیادہ وہ جنگ جاری نہیں رہ سکی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایکسس آف ریزسٹنس نے اس جنگ کو نہ صرف یہ کہ طول دیا ہے بلکہ دشمن کی شکست کے قریب لے کے گئے ہیں، اور 7 تاریخ کو اسرائیل کی شکست ہو گئی تھی۔
اسرائیلی حلقوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیلی سینا اور وشلیشکوں کی باتوں پر وشواس ہی نہ کریں۔ پاکستان کے پرسدھ ٹیکہ کار راشد عہد کا کہنا ہے کہ یمن کے جناندولن انصار اللہ کے پرمکھ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے امریکی گٹھ بندھن کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو آنے تو دیجئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
یمنی تو بالکل تیار ہے، انہوں نے کہا کہ ہر سیناریو کے لیے تیار ہے، آپ آ تو جاؤ، پھر تم کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا तुमको पता लग जाएगा, तुमको मालूम हो जाएगा कि हमारे यानी अंसारुल्लाह की यमन की कुव्वत क्या है। और पहले भी उनको पता लग चुका है, इसी वजह से वो लैतोलाल के शिकार हैं, इसलिए कि वो एक तरफ अगर इसराइल को सपोर्ट नहीं करते, इसराइल से तो वो यही काम लेते थे कि खित्ते में जो बदमाशियां जो गुंडागर्दी कराना चाहते थे और जब जंग छड़वाना चाहते थे, सारी जितनी साजिशें करवाना चाहते थे करते थे। मज़ाहमत पेचीदा और यानी के पेच दर पेच जो उनकी यानी के स्ट्रेटेजी है, वॉर स्ट्रेटेजी को इसराइल और इसराइल के हमनवा ममालिक और बड़ी ताकतें अमरीका ये समझने से कासिर है, उनकी यानी इंटेलिजेंस भी समझने से कासिर है उनकी मिलिट्री, और यही यही नाहली थी और यही उनकी क्या कहते हैं उनकी कमजोरी थी और उनकी नातवानी थी जिसके जिसकी वजह से ये मज़ाहमती क़ुव्वत ने 7 अक्टूबर को यानी अक्सा ऑपरेशन जैसा यानी हैरतअंगेज कारनामा अंजाम दिया।
कुछ ज़ायोनियों की ओर से सच स्वीकार करने से पता चलता है कि इसराइल गजा की दलदल में बुरी तरह से फंस चुका है और वो इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, और जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही अंदर धंसता जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि इसराइल अतीत से सबक ले और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम विश्व दर्पण और अब प्रस्तुत है सभा का अंतिम कार्यक्रम फारसी साहित्य का अनमोल रत्न। फारसी साहित्य का अनमोल रत्न।
दोस्तों, फारसी साहित्य का अनमोल रत्न की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत हम महान कवि निजामी गंजवी के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। उन्होंने एक विचार पेश किया था जिसको उन्होंने आदर्श नगर या आदर्श समाज की संज्ञा दी है। निजामी के दृष्टिगत आदर्श समाज वो है जहां पर बुराइयां नहीं हैं और लोग नैतिकता के सारे नियमों का अनुसरण करते हुए जीवन गुजारते हैं। अपने इस विचार को निजामी ने अपनी रचनाओं में जगह जगह पेश किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अपने जीवन काल में निजामी ने देखा था कि तत्कालीन समाज में बहुत सी बुराइयां और कुरीतियां घर कर गई हैं। इन बुराइयों को समाप्त किया जाना चाहिए।
निजामी की एक रचना का नाम मखजनुल असरार है, जिसके बारे में हमने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी। मखजनुल असरार के 12वें मकालात में निजामी दुनिया से दिल न लगाने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि इंसान को इस दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए। निजामी कहते हैं कि इस संसार में इंसान बिल्कुल अकेला है। उनके अनुसार इंसान का वास्तविक रूप में साथ देने वाला कोई नहीं है। वे अपने उपदेशों में कहते हैं कि दुनिया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग यह है कि इसे दिल न लगाया जाए। इसमें रहकर यदि कोई इसे दिल नहीं लगाता है तो यहाँ पर वो सफल जीवन गुजार सकता है।
13वें मकालत में भी निजामी ने सांसारिक माया मोह से दूरी की ही बात को जारी रखा है। वे कहते हैं कि दुनिया की मिसाल ऐसी नदी की तरह है जिसकी तलाश में एक प्यासा जा रहा है। वो ऐसे प्यासे की तरह है जो नदी के जितना निकट हो रहा है उससे उतना ही दूर होता जाता है। निजामी ने दुनिया की मिसाल मृग तृष्णा से दी है, जहां पर इंसान को ऐसा लगता है कि पानी बहुत निकट है, लेकिन वो जैसे जैसे उसके निकट होता जाता है वो उससे दूर होता जाता है। निजामी कहते हैं कि हर वो इंसान जो मुक्ति का इच्छुक है उसको हर हाल में संसार और उसके माया मोह को छोड़ना जरूरी होता है। Thank you.
اپنے لیکھ کو ٹھیک سے سمجھانے کے لیے نظامی نے ایک کہانی پیش کی ہے جس کا شیرشک ہے پیسے کا لالچی تپسوی۔ اس کہانی میں کسی عام انسان کی تلنا میں ایک تپسوی کو پیسے کا ادھک لالچی دکھایا گیا ہے۔ اس تپسوی کے پاس کسی نے امانت کے طور پر کچھ پیسہ رکھوایا تھا جس کو وہ خرچ کر دیتا ہے۔ بعد میں کم آئے اور ادھک خرچ کے کارن تپسوی کی آرتھک استھتی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ ویکتی جس نے تپسوی کے پاس اپنا پیسہ رکھوایا تھا اس کو معاف کر دیتا ہے اور پیسے کی مانگ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نظامی کے انوسار یہ تپسوی تپسیا کے باوجود ابھی اس چرن تک نہیں پہنچا ہے جہاں سے وہ سوئم کو سانسارک موہ مایا سے بچا سکے اور خود کو دنیا سے دور کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان اسی دنیا میں جیون ویتیت کرے اور اس سنسار کی اور آکرشت کرنے والی چیزوں سے دوری بنائے رکھے۔
اپنے 14ویں مقالت میں نظامی کہتے ہیں کہ اس ویکتی کو بالکل بھی سست نہیں ہونا چاہیے جو بھوشیہ ارتھات کل کے جیون کے لیے پریاس کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اس انسان کے لیے بھاوی خطروں کا بھی الیکھ کرتے ہیں جو ہر اس ویکتی کے سامنے آتے ہیں جو دنیا میں سفلتا کے لیے پریاس کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کو کبھی بھی دوسروں کو جھوٹ بول کر گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ سچ بولنا جاگرکتا کی نشانی ہے۔ یہاں پر وہ ایک اتیاچاری راجا تتھا ایک تپسوی کی کہانی پیش کرتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کتنا بھی شکتیشالی اور اتیاچاری کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس کو اپنے کیے کا بدلہ ملتا ہے۔
مخزن الاسرار کے 15ویں مقالات میں نظامی حسد یا ارشا نامک نیتک برائی کا الیکھ کرتے ہیں۔ اسلامی شکشاؤں کی آگ میں دوسرے سے جلن رکھنے والا ہمیشہ اس جلن کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دوسروں سے ارشا کرنے والے کی مانسکتا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ہر انسان کے بھیتر برائیاں نکالتا ہے اور اچھی وشیشتاؤں کے سوامی سے جلتا ہے۔ اسی سندر میں نظامی نے ایک کہانی پیش کی ہے۔ انہوں نے اس کہانی میں ایک راجا کے بیٹے یوراج کا قصہ پیش کیا ہے جس میں یوراج اکارن ہی اپنے یہاں کے بوڑھے لوگوں کی ہتیا کرنے کا آدیش دیتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اپنے یہاں سے بوڑھوں کو صاف کرنے کے بعد دیش کی حالت اچھی ہو جائے گی اور ہم کو سمسیاؤں سے مکتی مل جائے گی۔
سولہویں مقالت میں نظامی ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں کسی ستھان تک پہنچنے کے لیے اتھک پریاس کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کئی بار اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر مڑ دیتے ہیں۔ نظامی اس پرکار کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو دوسروں پر نہ مڑھیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے کیے کا بھگتان کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں بھی اس کو دوسروں کی آلوچنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اسی کے کیے کا نتیجہ ہے۔
اسی کے ساتھ نظامی یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان نے جو غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کے بدلے اس کو جو کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، نہ کہ زمانہ۔ اس کو حالات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حالات نے میرے ساتھ برائی کی اور غلطی میری نہیں ہے۔ اپنے لیکھ کے اس بھاگ میں نظامی نے ایک گھائل بچے کی کہانی پیش کی ہے۔ اس کے مادھیم سے وہ اپنے پاٹھکوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بیوقوف دوست سے سمجھدار دشمن اچھا ہوتا ہے۔
اپنے 17ویں مقالت میں نظامی گنجوی ایکانتواس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ ایکانتواس کے لابھ بتاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایکانتواس میں رہ کر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ نظامی کے انوسار ایکانتواس کے کارن منشیہ سانسارک مایا موہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب کسی انسان کے بھیتر ادھک دنیا کا پریم بڑھ جائے تو اس کو ایکانتواس میں جا کر اس کا اپچار کرنا چاہیے۔ کچھ مہاپروشوں کا کہنا ہے کہ بہت سی اچھی باتوں کو سیکھنے کا ستھان اور استھل ایکانتواس ہے۔
18ویں مقالات میں نظامی نے پھر سے دنیا سے دوری تتھا ارشا کے نقصان اور ارشالو ویکتی کی مانسکتا کا الیکھ کیا ہے۔ وہ اس کو بہت بری نیتک برائی بتاتے ہیں۔ इस संबंध में एक आलोचक एवं शोधकर्ता उस्ताद जरीन कुब कहते हैं कि निज़ामी ने अपने लेखों में कई बार जो सांसारिक माया मोह को त्यागने और उससे दूर रहने की बात कही है, उसका कारण यह है कि एक तो वे अपने समय में अपने आलोचकों को लेकर बहुत संवेदनशील थे, दूसरे तत्कालीन समाज की गतिविधियों को निज़ामी सही नहीं मानते थे। जिस समय वे जीवन गुजार रहे थे उस समाज में पाई जाने वाली खराबियों को निज़ामी कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए, वे इनको बदलना चाहते थे।
निज़ामी अपने काल के उन लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जो देखने में तो बहुत साफ सुथरे और अच्छे लगने वाले हैं लेकिन अंदर से बहुत ख़राब हैं। वे दूसरों की बुराई करते हैं, पाखंडी हैं और अपने हितों के हिसाब से चलते हैं। निज़ामी के अनुसार इस प्रकार के लोग दोस्ती के लिए सही नहीं हैं और उनको कभी भी अपने रहस्य नहीं बताए जा सकते। अपनी इस लेख में कहानी के माध्यम से निज़ामी ये बताते हैं कि लोगों के साथ दोस्ती में सबसे अधिक अपनी जबान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। निज़ामी का कहना है कि झूठों, लालचियों, ईर्ष्यालुओं और दूसरों की बुराई करने वालों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने राजों को उनसे नहीं कहना चाहिए।
दूसरे लोगों की बुराइयाँ और शिकायतें आखिरत या प्रलय का उल्लेख वास्तव में अपने लिए ही एक चेतावनी है। बाद में वे स्वयं से ही ये चाहते हैं कि बुराइयों से दूर रहें। निज़ामी ने चाहा कि इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और आंतरिक इच्छाओं का अनुसरण करने से बचे। मखज़नुल असरार के 20वें और अंतिम मकालात में निज़ामी अपने काल के लोगों की बहुत शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं।
निज़ामी गंजवी ने जिस प्रकार से अपने काल के लोगों और समाज की आलोचना अपने लेखों में की है उसको देखकर कुछ आलोचकों का कहना है कि वे बार बार ऐसा इसलिए कहते थे ताकि तत्कालीन बुरे समाज को नष्ट करके उसके स्थान पर एक नए समाज की स्थापना की जाए जो निज़ामी का आदर्श समाज था। इस समाज की कल्पना निज़ामी बहुत पहले कर चुके थे। अपने इस काल्पनिक समाज को निज़ामी व्यवहारिक बनाना चाहते थे जिसको वे मदीने फाजिला ही कहा करते थे।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।